ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 10 मार्च 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून: इंसान। सुनहरी मतन: यूहन्ना। बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। जवाबी मुतालिया: अमाल। पौलुस ने अरियुपगस में खड़े होकर कहा, ऐ इतने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बग़ैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को बनाया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हरचंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। दसीवाज बाइबल में से यसाया। अब ए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी, जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। मत्ती: और यीशु सब गांव और शहरों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भीड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता और परगंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती: फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कूड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, मुफ्त तुमने पाया मुफ्त देना। मत्ती: जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने 2 शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। यूहन्ना। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलम को गया। यरूशलम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैतेसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पज मुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि एक वक्त पर खुदावंत का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था सो शिफा पाता, खा उसकी जो कुछ भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुबतला था। उसको यीशु ने पड़ा देखकर और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे ज़्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आप से कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। यूहन्ना। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर खुद को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। मत्ती। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, यूहन्ना, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दर्सी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मैं सिली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। पानी का एक कतरा समंदर के साथ एक है, रोशनी की एक किरण सूरज के साथ एक है। इसी तरह खुदा और इंसान, बाप और बेटा हस्ती में एक हैं। कलाम कहता है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। सवाल, इंसान क्या है? इंसान मोहब्बत का ख्याल शबीह है, वो बदन नहीं है, वो खुदा का एक मुरकब ख्याल है जिसमें तमाम तर दुरुस्त ख्यालत शामिल हैं। ऐसी अमूमी इस्तलाह जो खुदा की सूरत और शबीह की अकासी करती है, साइंस में पाई जाने वाली हस्ती की बाखबर शनाख्त जिसमें इंसान खुदा या अक़ल की अकासी है और इसीलिए वो अब्दी है, यानी वो जिसकी खुदा से मुख्तलिफ कोई अक़ल नहीं है, वो जिसमें ऐसी एक भी खासियत नहीं जो खुदा से ना ली गई हो, वो जो खुद से अपनी कोई ज़िंदगी जहानत और ना ही कोई तख्लीकी क़ुव्वत रखता है, मगर उस सब की रूहानी तौर पर अकासी करता है जो उसके बनाने वाले से ताल्लुक़ रखती है। कुफारा खुदा के साथ इंसानी इत्तेहाद की मिसाल है जिसके तहत इंसान इलाही सच्चाई, ज़िंदगी और मोहब्बत की अकासी करते हैं। मसीह रूह था जिसे यसू ने अपने खुद के बयानत में तकवीयत दी, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मैं और बाप एक हैं। ये मसीह या इंसान यसू की अलूहियत उसकी फितरत खुदाई थी जिसने उसे मुतहरक रखा। इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत ने यसू को गुनाह, बीमारी और मौत पर इख्तियार दिया। उसका मकसद आसमानी हस्ती की साइंस को जाहिर करना था ताकि इसे साबित करे जो खुदा है और जो वो इंसान के लिए करता है। यसू ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए एक पैगाम भेजा जिसका मकसद एक सवाल से कहीं बढ़कर ये साबित करना था कि मसीह आ चुका था। जो कुछ तुम देखते और सुनते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कूड़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। दूसरे अल्फाज में यूहन्ना को बता दो कि इलाही कुव्वत का इजहार क्या है, तो वो फौरन समझ जाएगा कि मसीही काम में खुदा एक ताकत है। खुदा करे कि आज के मसीही इस चाल चलन की मजीद अमली अहमियत को कबूल करें। यह मुमकिन है, हाँ ये हर बच्चे, मर्द और औरत की जिम्मेदारी और इस्तेहकाक है कि वो ज़िंदगी और सच्चाई, सेहत और पाकिजगी के इजहार के वसीला मालिक के नमूने की किसी हद तक पैरवी करें। यसू ने कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। कौन उस पर ईमान लाता है? वो अपने शागिर्दों से मुखातिब था, ताहम उसने ये नहीं कहा तुम्हारे दरमियान ये मौजज़े होंगे, बल्कि उनके दरमियान वो ईमान लाते हैं आने वाले वक्त में। यहाँ लफ्ज़ हाथ इस्तारन इस्तेमाल हुआ है जैसे कि मतन में है, खुदाउंद का दहना हाथ बुलंद हुआ है। ये रूहानी क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है, वगरना शिफा रूहानी तौर पर ना हो पाती। एक और मौका पर यसू ने दुआ की सिर्फ 12 शागिर्दों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला ईमान लाएंगे। आइए हम इस अकीदे से पीछा छुड़ाएं कि इंसान खुदा से अलग है और सिर्फ इलाही असूल, ज़िंदगी और मोहब्बत की फरमाबरदारी करें। यहाँ पूरी हकीकी रूहानी तरक्की के लिए रवानगी का बड़ा नुक्ता आता है। किसी शख्स का खुद ये कबूल करना कि इंसान खुदा की अपनी शबीह है, इंसान को लामहदूद ख्याल पर हुक्मरानी करने के लिए आज़ाद करता है। ये रासख अकीदा मौत के लिए दरवाज़ा बंद करता है और लाफानियत की जानब इसे वसी खोल देता है। आखिरकार रूह की समझ और पहचान ज़रूर होनी चाहिए और हम इलाही असूल के इदराक के वसीला हस्ती के भेदों को सुलझाने में हमारे वक्त को बेहतर फ़रोग देंगे। फ़िलहाल हम ये नहीं जानते कि इंसान क्या है, मगर हम यकीनन तब ये जान पाएंगे जब इंसान खुदा की अकासी करता है। इंसान के वसीला खुदा का इजहार ऐसे ही है जैसे रोशनी खिड़की के शीशे में से गुजरती है। रोशनी और शीशा कभी बहम नहीं मिलते, मगर मादे की तरह शीशा दीवार की निस्बत कम मुबहम होता है। वो फ़ानी अकल جس میں سے سچائی واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ ہے جو زیادہ مادیت زیادہ غلطی کھو چکا ہے تاکہ سچائی کے لیے بہتر شفافیت بن سکے۔ پھر ایک بادل کے باریک قطرے کی صورت پگھلنے کی مانند یہ سورج کو مزید نہیں چھپاتا۔ مادی بدن اور عقل عارضی ہیں مگر حقیقی انسان روحانی اور ابدی ہے۔ حقیقی انسان کی شناخت کھو نہیں جاتی بلکہ اس وضاحت کے وسیلہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ہستی اور پوری شناخت کی شعوری لامحدودیت غیر ترمیم شدہ سمجھی جاتی اور قائم رہتی ہے۔ جب خدا مکمل اور ابدی طور پر اس کا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ انسان ایسا کچھ گوا بیٹھے جو حقیقی ہے۔ یہ خیال کہ عقل مادے میں ہے اور یہ کہ نام نہاد خوشیاں اور درد، مادے کی پیدائش، گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہیں، ایک فانی یقین ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جو گم ہو جائے گا۔ بشر کے حوالے سے ہماری تشریح کو جاری رکھتے ہوئے آئیے یاد کریں کہ ہمساز اور غیر فانی انسان ہمیشہ سے موجود ہے اور بطور مادہ وجود رکھتے ہوئے کسی فانی زندگی، جوہر یا ذہانت سے ہمیشہ بلند اور پار رہتا ہے۔ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے نہ کہ افسانوی ہے۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان اور عقل خدا ہے جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ انسان خدا روح کا معاون ہے اور کسی کا نہیں۔ خدا کا ہونا لامتناہی، آزادی، ہماہگی اور بے پناہ فرحت کا ہونا ہے۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ یور کے آرچ کاہن کی مانند انسان پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے آزاد ہے، یعنی خدا کی سلطنت میں۔ خداوند کے وطن میں رہنا محض جذباتی خوشی یا ایمان رکھنا نہیں بلکہ زندگی کا اصل اظہار اور سمجھ رکھنا ہے، جیسا کہ کرسچن سائنس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ خداوند کے وطن میں رہنا خدا کی شریعت کا فرما بردار ہونا، مکمل طور پر الہی محبت کی، روح کی، نہ کہ مادے کی حکمرانی میں رہنا ہے۔ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی خدا ہے۔ خود سے سوال کریں، کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو اعلیٰ اچھائی تک رسائی رکھتی ہے؟ کیا میں سچائی اور محبت کی شفائیہ قوت کا اظہار کر رہا ہوں؟ اگر ہاں تو دوپہر تک راستہ روشن ہوتا جائے گا۔ آپ کے پھل وہ سب کچھ ثابت کریں گے جو خدا کا ادراک انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں کہ یہ روحانی خیال روح القدس اور مسیح ہی ہے جو آپ کو سائنسی یقین کے ساتھ اس شفا کے قانون کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے جو پوری حقیقی ہستی کو بنیادی طور پر ضرورت سے زیادہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے الہی اصول محبت پر بنیاد رکھتی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔